खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। सो खुदावंद का शुक्र हो आज की ऐसी सुबह के लिए जो उसने हम सबको बख्श दी, और हम इस ज़मीन पर इसीलिए हैं कि उसकी मर्ज़ी और उसके मकसद को अपनी ज़िंदगी के लिए जाने। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से उसके आईने में अपनी सूरत, अपनी हालत, अपने आप को जांचें, सो आए हम दुआ करें और खुदावंद की हिकमत और दनाई मांगेंगे, क्योंकि खुदावंद का बंदा सुलेमान कहता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी हिकमत और तेरी दनाई के लिए। आज हम जो कुछ भी सीखें, आए हुए तमाम बहनों भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों बच्चों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास कर खुदावंद खुदा इस सुबह बेटी सिंथिया के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने उसे इस खौफनाक हादसे से बचाया। और खुदावंद बाकी तमाम जो जिस्मानी कमी कमज़ोरी है, जो ज़ख़म है जलने के बायस, उन सबको शिफा दे। और इसी तरह कलीसिया में तमाम बहन भाइयों के लिए जो किसी मुश्किल परेशानी में हैं, तेरा इत्मीनान और तेरी तसल्ली चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज हम सब के साथ हो, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और तूने अपने कलाम में कहा है कि मुबारक हैं वो कौमें जिनका खुदावंद खुदा इसराइल का खुदा है। सो खुदा बाप, हम सबको बड़ी बरकत दे, आज जो कुछ भी सीखें हम बहुत सा फल लाएं। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका दो बाप, उसकी हम 17वीं आयत को आज पढ़ेंगे। हमने 16वीं आयत में से कल सीखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके जो बनीनू इंसान और खुदा के दरमियान दुश्मनी थी उसे दूर किया, और जो यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान फसाद था उस फसाद को भी ख़त्म किया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता हूँ कि तुम उस रास्ते से खुदा की हजूरी में जाओ। सो आज हम 17वीं आयत में से सीखेंगे कि यीशु मसीह ने आकर किस तरह उस दूरी को, किस तरह उस रुकावट को, किस तरह उनको जो दूर थे यानी यहूदी, और किस तरह उनको और किस तरह उनको जो दूर थे यानी के गैर कौमें, और किस तरह उनको जो नज़दीक थे यहूदियों को मिला दिया और सुलह का पैगाम दिया। सो पालूस रसूल कैदखाना में से ये ख़त लिखते हुए ईमानदारों को याद दिलाता है कि यीशु मसीह का कफ़ारा कितना फ़ायदा मंद ठहरा, कि यीशु मसीह की एक पहल ने, यीशु मसीह की आज़ाद मर्जी ने, कि यीशु मसीह ने अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसला किया उसके बायस क्या बरकत कौमों के लिए, नस्लों के लिए, कबीलों के लिए और पूरी दुनिया के लिए ठहरी। सो इफ़सियों दो बाप उसकी 16वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा 17वीं आयत तक, और यहाँ पर लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। सलीब पर दुश्मनी ख़त्म की, दोनों को एक तन से करने से मुराद यानी एक बनाने से मुराद यानी यहूदी और गैर यूनानी और तमाम कबीले, जिसमें हर एक कबीला आप दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब को जमा कर सकते हैं, सब को क्या किया, खुदा के पास लाने का यीशु मसीह वसीला बना। सो आज हम 17वीं आयत पर गौर करेंगे, और लिखा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। एक बार फिर आपके लिए पढ़ूंगा, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर जब हम देखते हैं पालूस रसूल की सोच और पालूस रसूल का बयान करने का तरीका, तो वो कहता है, और उसने आकर, उसका जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं यसु ने आकर, यसु ने आकर, क्योंकि बगैर यसु मसीह के निजात मुमकिन नहीं थी, कोई ऐसा और जरिया मुमकिन नहीं था कि जिसके वसीला से इंसान निजात पा सके, छुटकारा हासिल कर सके। गुनाह की उस मंडी में से यसु मसीह ने आकर पहल करके आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर क्या किया, आकर तुम्हें जो दूर थे, यानी कि वो तमाम जो तारीकी की अंधेरी रातों में बैठे थे, जिनसे मुराद हम सब, जिनसे मुराद यूनानी, जिससे मुराद हर एक कबीला जिसमें हिंदू, सिख, जापानी, अगवानी, हर एक नस्ल, पूरा मुल्क है पाकिस्तान, उन सब को जो दूर थे, यानी कि वो लोग जो इसराइल की नस्ल से नहीं थे, वो लोग जिनके साथ इब्राहिम का वादा, इब्राहिमी वादा नहीं किया गया था, और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं जो दूर थे, यानी कि तमाम गैर कौमें, तमाम गैर कौमें, जिसमें आप अपनी उंगलियों पर कौमों को गिन सकते हैं कि वो तमाम कौमें जो दूर थीं, और उन्हें जो नज़दीक थे, यानी कि ये किस तरफ इशारा है, यहूदियों की तरफ, जो खुदावन खुदा की चुनी हुई कौम, उसकी नज़दीक कौम, जिसके साथ खुदा ने वादे किए, जिनको खुदा ने वादा की ज़मीन के लिए बुलाया, और जिनके साथ ये वादा किया कि इब्राहिम तेरी नस्ल से बहुत सी नस्लें बरकत पाएंगी, बहुत से कबीले बरकत पाएंगे, और ऐसा आज हो भी रहा है, जो कोई यसु मसीह पर ईमान लाता है वो तमाम बरकत पाते हैं। सो यहूदियों को जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, सुलह की खुशखबरी दी। सो यसु मसीह ने आकर सुलह की खुशखबरी दी यहूदियों को, गैर यहूदियों को, यानी उन तमाम गैर कौमों को और उन तमाम यहूदियों को जो उस मुल्क में रहते थे। सो आज यहाँ पर इस सादा से हिस्सा में से हम क्या सीखेंगे, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया दौर में ऐसा फसाद था, ऐसी मुश्किल थी कि रसूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर थे, वो इर्द गिर्द के यहूदिया और यरूशलम ही के इलाके में थे, और वो पहले यहूदियों तक गए, लेकिन खुदावंद यसु मसीह ने उनको कहा कि अब तुम्हें यहूदियों तक ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों के पास जाने की ज़रूरत है। इसके लिए जब हम देखते हैं कि वो जो दूर थे, किसी ना किसी को जाने की ज़रूरत थी, और आज हम जिस ख़त को पढ़ रहे हैं, पालूस रसूल ने पहल की, तो वो इफ़सस के शहर में गया, जो शहर बुत परस्ती में, जो शहर कारोबार में, जो शहर देवी देवताओं की परस्तिश करने में, मंदिरों में झुकने में मशहूर था, वहाँ पर गया और उसने खुशखबरी जाकर सुनाई। मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो 10 बाप, रोमियो 10 बाप में पालूस रसूल इस बात को लिखते हुए, जो बात यसु मसीह की पैदाइश से पहले गालबन हम कह सकते हैं कि 750 साल या 1000 साल पहले नबूवत के तौर पर जब यसाया नबी को खुदा ने बुलाया, तो उस बातचीत को लिखते हुए पालूस रसूल रोमियो 10 बाप उसकी 14 आयत में कहता है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, सवाल करता है, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और मनादी करने वाले के और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। सादा लफ्जों में पालूस ये कहता है कि जिसके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं उस पर कौन किस तरह ईमान ला सकता है। जैसे आपके शहर, आपके मुल्क में बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे कबीले हैं। पिछले दिनों में एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, तो वो सिंध के इलाका में रहता है और उसमें बहुत से कबीले हैं जो 17 मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। वो उन कबीलों में जाकर मसीह की क्या करता है, खुशखबरी देता है। तो पालूस का यहाँ कहने का मतलब है कि जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे दुआ वो क्यों करें, यानी कि अगर किसी बंदे ने यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं रखा वो किस तरह उससे दुआ कर सकता है, या अगर उसने मसीह पर मसीह की मनादी ही नहीं सुनी तो वो किस तरह निजात पा सकता है। और इसीलिए वो कहता है बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। हम सबको पालूस रसूल यहाँ पर सिखाना चाहता है 15वीं आयत में, और जब तक वो भेजा ना जाए मनादी क्यों कर करे। इसीलिए लिखा है, चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। सादा तौर पर पालूस रसूल कहता है हमें खुशखबरी का पैगाम देने की ज़रूरत है, खुशखबरी का पैगाम देने की ज़रूरत है तमाम कौमों को, ना कि सिर्फ मसीहियों को, हर एक को यीशु मसीह के बारे में बताने की ज़रूरत है कि वो ज़िंदगी देता है, बगैर उसके निजात नहीं है। सो पालूस रसूल गया और इसीलिए पालूस कहता है कि यीशु मसीह ने आकर, अगर यीशु मसीह नहीं आता ना आता तो कभी भी कोई निजात नहीं पा सकता था। अगर यीशु मसीह हमारे लिए गुनाहों के, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए कफारा ना देता तो आज हम यहाँ पर उसके कलाम को ना सुनते। अगर हमारे इलाका में कोई तोमा रसूल या दूसरा कोई ना आता और मनादी ना करता तो आज हम यहाँ पर मसीही ना कहलाते। किसी ना किसी को जाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही बात यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कही थी कि पस जाओ और सब कौमों को जाकर शिगिर्द बनाओ। सो सवाल ये है कि क्या हम ये कर रहे हैं, या फिर अपने घर में सुकून से बैठे हैं, मैंने ईमान रख लिया है अब बात छोड़ो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। या फिर पालूस जैसे कहता है कि मैं अंजील की खुशखबरी सुनाने से शर्माता नहीं। क्या आज हम शर्मा रहे हैं जैसे पालूस कहता है मैं अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं, जैसे पालूस कहता है कि जो कोई खुशखबरी का पैगाम लेकर जाता है उसके कदम ऐसे हैं जैसे खुशखबरी देने वाले के कदम। और बाइबल में ये बात आई है कि खुशखबरी का पैगाम देने वाला ऐसा है जैसे प्यासी जान के लिए कोई पानी मुहैया करता है। सो यीशु मसीह आया, उसने निजात दी। पालूस रसूल रोम शहर में गया, उसने वहाँ पर जाकर मनादी की और चर्च कलीसिया कायम हुई। उसने इफ़सस में जाकर मनादी की, वहाँ पर कलीसिया कायम हुई। तोमा रसूल ने इंडिया में और फिर हमारे इलाका में आकर मनादी की तो लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। आप में ने से किसी न किसी ने, हमारे बाप दादा ने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह का कलाम सुना तो हम उस उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और उनके वसीला से आज दूसरी नस्ल यीशु मसीह पर ईमान ला रही है। सो सवाल ये है कि क्या हम जाएंगे या फिर हम अंजील की खुशखबरी सुनाने से शर्माते हैं, या फिर हम जैसे पतरस के जहन में था। मेरे साथ एक हवाला निकालें, इब्तदाई कलीसिया में ये बातें थी जो उनको रोकती थी कि जाकर गैर कौमों को कलाम ना सुनाएं। यहाँ पर जब इमाल की किताब हम 10वें बाब को देखते हैं तो पहली 23वीं आयत में आपको पता होगा कैसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स था जो सूबेदार था और वो दयानतदार था, खुदा से डरता था और वो बहुत खैरात करता था, वो दुआ करता रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ खुदावंद का फरिश्ता उस पर जाहर हुआ और उसे दिखाई दिया और कहा कि तेरी दुआओं को सुन लिया गया है, तेरी खुरैत यादगारी के तौर पर खुदा के हजूर पहुंची है। सो अब तू क्या कर, जा अपने आदमियों को भेज जो तेरे मतहद हैं, उनको शमाउन जो पत्रस कहलाता है उसे भेज कर बुलवा ले। वो शमाउन दबा के घर में मेहमान है, जो समंदर के गिर्द समंदर के किनारे पर रहता है, उसका घर है। सो ये वो सारी बातें उसने फरिश्ता से सुनी, सो ये बातें उसने फरिश्ता से सुनी। तो उधर क्या देखते हैं, नौवीं आयत में पत्रस, नौवीं आयत में इमाल 10 बाब 9वीं आयत में लिखा है, जब हम पत्रस के बारे में यहाँ पर देखते हैं, दूसरे दिन जब वो राह में थे, जो बंदे कर्नीलियस ने भेजे और शहर के नज़दीक पहुँचे, तो पत्रस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतर रही है, जिसमें ज़मीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई के ए पत्रस उठ ज़िबा कर और खा, मगर पत्रस ने कहा ए खुदावंद हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज़ आई जिनको खुदावंद ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। तीन बार ऐसा ही हुआ और फियरफुल वो चीज़ आसमान पर उठा ली गई। सो पत्रस ने ये रोया देखी और यहाँ पर इसका मतलब है खुदा का कलाम उसे ये कह रहा था कि जा और गैर कौमों को यीशु मसीह की खुशखबरी दे। यहूदियों के जहन में ये बात थी कि गैर कौमें क्या हैं, नापाक हैं। गैर कौमें क्या हैं, नापाक हैं। जैसे बहुत दफ़ा हमें हमारे हमें कहा जाता है कि हम नापाक हैं, बहुत दफ़ा हमें नीचा गिना जाता है, बहुत दफ़ा हमें वो दर्जा नहीं मिलता जो दूसरे लोगों को मिलता है मसीही होते हुए पाकिस्तान में। सो पत्रस के जहन में यही बात थी, लेकिन खुदा ने कहा कि तू जाकर उनको बता। सो क्या हुआ, जब पत्रस दुआ कर चुका, अपने दिल में हैरान था, सो कर्नीलियस ने जो आदमी भेजे वो पत्रस के घर के दरवाज़ा पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटा कर उसे पुकारने लगे। और रूह कुद्दस ने पत्रस से कहा कि तू भिला चिचक उनके साथ चला जा, क्योंकि मेरा इसके लिए एक मकसद है। सो पत्रस उनके साथ जाता है और उनको जाकर कलाम सुनाता है, और जब कलाम सुनाना शुरू करता है तो अपनी ज़बान खोलता है, और इसके बारे में हमें ज़िक्र मिलता है 34वीं आयत में। पत्रस यहाँ पर कलाम करते हुए कहता है इमाल 10 बाप उसकी 34वीं आयत में, पत्रस ने ज़बान खोल कर कहा अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, कि खुदा सिर्फ यहूदियों की तरफ ही नहीं बल्कि वो किसी का तरफदार नहीं। और क्यों उसने कहा, 35वीं आयत में लिखा है, बल्कि हर कौम जो उससे हर कौम में से जो उससे डरता और रासबाजी करता वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु की मार्फत जो सबका खुदावन है सुला की खुशखबरी दी, सुला की खुशखबरी दी। और यही बात पालूस कह रहा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। हम सब को सुलह की खुशखबरी देने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी से, जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हमारी मसीही ज़िंदगी मशहूर है कि हम कसम नहीं खाते, मशहूर है कि मसीही झूठ नहीं बोलते, मशहूर है कि मसीही ईमान के पक्के हैं। सो सवाल ये है कि क्या आज ऐसी ही बात है, या फिर हम गैर कौमों में इस बात से जाने जाते हैं कि मसीही झूठ बोलते हैं, مسیحی ایمان پر قائم نہیں رہتے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی زندگی سے مسیح ظاہر نہیں ہوتا۔ سو ہماری زندگی کھلی خوشخبری کی کتاب ہے، اس لیے ہمیں خوشخبری کا پیغام دینے کی اور اس میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اور پالوس رسول یہی سکھانا چاہتا ہے، یسوع آیا، میں گیا، اب ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور ہم کسی بات سے، کسی خطرے سے، کسی شرم سے، یا کسی اور بات سے نہ گھبرائیں، بلکہ تیرے کلام کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔